ਇੱਕ ਤੁਹੀਨ ਅਹੰਕਾਰ। ਸਾਧ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲੈ ਬੰਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਪੁਰ ਨੂਰ ਕਰੇ।
ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਧੰਨ ਅਹੰਕਾਰ ਜੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਸਿਰਫ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਆਈ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਦੂਰੋਂ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰੀ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਗਰਮੀ ਵੀ ਜਾਏ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਸਭ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੀਤ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਂ ਸਪੀਚ ਰੂਪ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੀ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਇੱਕ ਹੀ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਬਸਤਾ ਹੈ ਔਰ ਹਮ ਸਭ ਉਸਕੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਤੋ ਕੈਸੇ ਇਹ ਜੋ ਅਭੀ ਹਮਨੇ ਅਵਤਾਰ ਬਾਣੀ ਕਾ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਅਭੀ ਸੁਨਾ ਵੀ, ਜਿਸ ਪੇ ਅਭੀ ਔਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਂਗੇ, ਤੋ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਮੇਂ ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸੇ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੇਂ ਅਗਰ ਹਮ ਆਤੇ ਹੈ ਤੋ ਹਮਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਪੇ ਇਹ ਜੋ ਨੂਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਹਮ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹ ਦੇਖੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਹਮੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਸੱਜਣ ਮਿਲ ਜਾਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਨਕਾ ਹਮੇ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕਰ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਉਨਸੇ ਬਾਤ ਵੀ ਨਾ ਕੀ ਹੋ, ਤੋ ਵੀ ਐਸੇ ਲਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਾ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਹੈ ਔਰ ਉਨਕਾ ਚਿਹਰਾ ਜੋ ਇਤਨਾ ਐਸੇ ਨੂਰ ਉਸਮੇ ਸੇ ਨਿਕਲ ਰਹਾ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਵੋ ਜੋ ਹੈ ਬਾਤ ਕਿ ਕੈਸੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀ ਹੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਹਮ ਸੰਗਤ ਆਤੇ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਯਹਾਂ ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਵਚਨ ਸੁਣਨੇ ਕੋ ਮਿਲਤੇ ਹੈ, ਤੋ ਵੋ ਜਬ ਹਮ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਮੇਂ ਉਤਾਰਤੇ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਮ ਮੇਂ ਢਾਲਤੇ ਹੋਏ, ਤੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੋ ਜੋ ਮਨ ਮੇਂ ਚੈਨ ਆਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਪੇ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਭਾਵ ਹੋਣੇ ਕੀ ਵਜਹ ਸੇ ਇੱਕ ਇਹ ਜੋ ਨੂਰ ਆਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਲ ਇਹ ਜੋ ਆਨੰਦ ਕੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਤੀ ਹੈ ਉਸਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੇਤੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ,
ਸਾਧ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲੈ ਬੰਦੇ ਮੈਲ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਦੂਰ ਕਰੇ।
ਤੋ ਯਹੀ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੇਂ ਹਮਾਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਹਮਾਰੇ ਕੋ ਸਿਖਾਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਮੇਂ ਹਮੇ ਕਿਸੀ ਕੇ ਲੀਏ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸੇ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਤੋ ਹਮਾਰੇ ਹੀ ਮਨ ਕੋ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰੇਂਗੇ ਔਰ ਬਾਅਦ ਮੇਂ ਜੋ ਹਮ ਭਾਵ ਰੱਖਤੇ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਤੋ ਉਸ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣੇ ਪਰ ਵੋ ਇਤਨਾ ਉਸਕਾ ਇੰਪੈਕਟ ਜੋ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤੋ ਗੰਦਾ ਕੀਆ ਹੀ, ਉਸਕੋ ਵੋ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕੜਵੇ ਬੋਲੇ ਔਰ ਆਗੇ ਉਸਕੋ ਵੀ ਵੋ ਜੋ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਆਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸਕੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵੋ ਜੋ ਉਸਕੇ ਮਨ ਕੋ ਬਾਅਦ ਮੇਂ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਤੋ ਹਮ ਜਿਤਨਾ ਸੰਗਤ ਮੇਂ ਆਏਂਗੇ ਯੇ ਹਮ ਇਨ ਕਮੀਓ ਸੇ ਦੂਰ ਉਤਨਾ ਰਹੇਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ,
ਸਾਧ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲੈ ਬੰਦੇ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਹੋਵਣ ਦੂਰ।
ਯੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਂ ਇਹ ਜਬ ਹਮ ਤੱਕ ਹਮਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਯੇ ਉਤਰਾਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਆਤੀ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਤੋ ਫਿਰ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਗਾ। ਯੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਜਬ ਹਮੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਹਮੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਪਹਿਚਾਨ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹਮਾਰੇ ਚਾਰੋਂ ਔਰ ਹੈ, ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹਰ ਪਲ ਜਬ ਰਹਿਤਾ ਹੈ, ਤੋ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਹਮ ਜਬ ਮਾਨ ਲੇਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਇਸਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਤੋ ਅਗਰ ਇਹ ਹਮਾਰੀ ਜਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਮਾਰੀ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਰੂਪ ਮੇਂ ਜਾਂ ਸਵਸਥ ਰੂਪ ਮੇਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹਮੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਇਹ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੋ ਵੀ ਇਸ ਮੇਂ ਵੀ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਮੇ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਤੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਯਹੀ ਭਾਵ ਹੋਤੇ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹਮਾਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੀ ਦੀ ਗਈ ਘੜੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਤੋ ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਆ ਹੈ ਸਭ ਉਸਮੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਭਾਵ, ਵੋ ਜੈਸਾ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਵੋ ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ,
ਸਾਧ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲੈ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਮਾਣ ਗਰੂਰ।
ਤੋ ਸੰਗਤ ਮੇਂ ਹਮ ਜਿਤਨਾ ਆਤੇ ਹੈ ਹਮ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰੋਂ ਕੇ ਉੱਪਰ ਕਾਮ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਵੋ ਬਾਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਜੋ ਮੋਤੀ ਹੈ ਇਸ ਇਤਨੇ ਬੜੇ ਤਾਲਾਬ ਮੇਂ, ਵੋ ਉਸਕੋ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਜਿਸਮੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਇਤਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੋ ਮਨ ਸੇ ਹਮਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਖਾਮੀਆਂ ਹੈ वो सब दूर हो जाती हैं और सिर्फ ये अच्छे भाव ही जो ये सब संत महात्माओं के साथ जो आप सब ब्रह्म ज्ञानी यहाँ बैठे हैं तो किस तरह वही भाव हैं जो ज़िंदगी को तब्दील कर सकते हैं। जहाँ मन में हमेशा प्यार और ऐसी अच्छी भावनाएं होनी चाहिए और बिल्कुल भी ये गुरूर और उस तरह की खामियां नहीं होनी चाहिए, तो ये सब हमें फिर सत्संग की इम्पोर्टेंस के ऊपर ही दर्शाते हुए कि ये सब भी फ़ायदे हमारे तब तक जीवन में हैं जब तक हम सच्चे मन से सत्संग आके सत्संग को सत्संग की तरह करके सिर्फ वो ना समझ कर कि आए हैं और इतने से इतने बजे तक का अनाउंसमेंट है सत्संग का तो आए बैठे सुने चले गए, पर वो सब हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। जब तक सुनकर उनको कर्मों में नहीं ढालेंगे अपनी सोच को नहीं बदलेंगे तब तक वो शब्द सिर्फ शब्द तक ही रह जाएंगे। हाँ जी,
साध दी संगत कर ले बंदे अण डिठा रब पाएगा।
तो जब हम ये संतों के बीच में विचरण कर रहे हैं अपना ये संगत में तो ये हमें क्या, ये हर एक जो संत है ब्रह्म ज्ञानी है वो परिचित है इस प्रभु परमात्मा निरंकार से, सबने रूबरू होकर आमने सामने ये परमात्मा को जहाँ देखा है और वहाँ कहा भी जाता है कि ये परमात्मा को कोई नहीं देख सकता, पर यहाँ इतने दावे से अवतार वाणी में ये अगर अंकित है कि ये अनडिठा दिखेगा तो उसका मतलब क्या है कि हम जब तक अपने आप को सरेंडर नहीं करते, ये हमारी जिज्ञासा कि हमारी असली पहचान हमारा मकसद हम क्या इस जीवन में करने आए हैं और किस से आए हैं किस में जाना है, जब तक वो अपना नहीं समझेंगे सिर्फ ये शरीर तक ही में सीमित हो जाते हैं कि ये शरीर ही मैं हैं, पर ऐसा नहीं है। जो आत्मा है ये तो शरीर से बहुत ऊँची है, ये इसी परमात्मा का अंग है जो हमारे अंदर है, तो कैसे हमें ये ब्रह्म ज्ञानियों के संग करने से ये ज्ञान की दात अपनी झोली में भी मिल सकती है। हाँ जी,
साध दी संगत कर ले बंदे फलदा फूलदा जाएगा।
तो ये फलदा फूलदा दा भाव जो होता है कि कैसे हम खुशी हर समय की वो ले सकते हैं कि अगर कुछ ऐसा भी है जो हमारे को ठीक नहीं लग रहा, हमारा मन परेशान होने की बजाय उस घड़ियों में भी कैसे खुशी ढूंढे, तो ये सब तभी है जब हमारे मन में वो कामनेस होगी, हमारे मन में ये सिर्फ अपने आप को सेल्फ फोकस्ड रख के कि हमने सत्संग आना है अपना सुधार करना है, दूसरियों की कमियों पे उंगली नहीं उनकी कमी नहीं देखनी बल्कि अपने आप को देखना है, तो ये हम तब तक ही प्रफुल्लित होंगे जब तक हम ये सत्संग सुनकर अपने अंदर ही वो भावों के अंदर उजाला पैदा करें। जी,
साध दी संगत कर ले बंदे पीवेगा तू अमृत रस।
तो सत्संग में हर कोई बोल जो भी बोला जाता है वो अमृत के समान होता है कि कैसे ये जो अमृत है इतनी कीमती, ये ऐसा वो उसको सिग्निफिकेंस तो अमृत का हमेशा एक होली वाटर जल की तरह लिया जाता है, पर संतों के वचन इतने कीमती हैं कि उनकी वैल्यू भी उसी के समान की है कि अगर जैसे बोला जाता है कि अमृत ले लिया तो हमेशा के लिए अमर हो गए, तो वैसे ही संतों के वचनों को अगर हमने अपने मन से सुना सिर्फ कानों से नहीं तो ये मन हमेशा एक खुश रहेगा, हमारी अंदर आत्मा वो अमृत रूप का ये रस लेकर हमेशा के लिए ही कायम दायम रहेगी। जी,
साध दी संगत कर ले बंदे हो जान पंजे तेरे वस।
तो ये पांच वो जो हम सुनते हैं कि ये इंद्रियां होती हैं काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, तो ये पांच हमारे ऊपर कैसे कभी कभी हावी हो जाती हैं, किसी ने अगर कुछ कह दिया थोड़ा सा भी तारीफ कर दी तो वो मन में अहंकार आ जाता है, कभी तो उस एक्सटेंट तक भी आ जाता है कि वो इतना सूक्ष्म होता है हमें पता तक नहीं लगता कि कैसे हमारे अंदर किसी की तारीफ ना भी करे हुए हमें अपना गुण कोई खुद ही अगर रियलाइज़ हो जाता है तो वो हमारे जैसे बोलते हैं सर पे चढ़ जाती है बात, कि कैसे वो धीरे धीरे वो हमारा अहंकार का रूप ले लेता है। वैसे ही अगर किसी ने कुछ अगर बोल दिया जो हमें पसंद नहीं आई बात तो हमारा मन कैसे क्रोधित हो जाता है। ऐसे ही ये बाकी भी जो जिक्र हुआ पांचों का, तो कैसे हमारे मन में ये अगर हम पर हावी हो रही हैं तो हमारा बिल्कुल उसमें क्या योगदान, ये जो हमारे अंदर चेतना है हम उसको कितनी इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर कोई बोलते हैं कि जंगली घोड़ा जो बेलगाम है वो इधर उधर भाग रहा है, पर जब उसमें लगाम लगाकर एक एडजस्ट किया जाता है अपने हाथों से, घुड़सवार उस पर चढ़कर फिर वो किसी भी डायरेक्शन में उस घोड़े को ले जा सकता है। तो वैसे ही हमने अंदर ये चाहे कितने इमोशंस हैं ये हम फील करते हैं, पर हमने इन इमोशंस के वश में नहीं होना, इन इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखना है। और ये तभी हो सकता है जब हमें हर पल ये एहसास हो कि ये निरंकार हमारे अंग संग हमेशा हैं, तो हम जानबूझ के कोई भी ऐसी गलती नहीं करेंगे, कोई भी ऐसा भाव मन में नहीं लाएंगे जो हमको ऐसा हावी हो जाए कि हम वो जानवर रूप ले लें, एक इंसान के शरीर में हो के मनुष्य तन जो इतने दुर्लभ होता है, उसके बाद जो तक हम ऐसे अपने अंदर डाल देते हैं, ये इनको हावी होने देते हैं, तो ये हमेशा ये एहसास रहे, ये भय रहे कि ये परमात्मा ने जिसने हमको ये शरीर बख्शा है, इसकी सोच, इसके इमोशंस जो बच्चे हैं वो हम नेगेटिव की बजाय अपने आप को एक पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएं। जी
साध दी संगत कर ले बंदे कायम दिल दा पारा रहे,
तो वही टेम्परमेंट की बात आ रही है, ये पारे की बात कि कैसे कभी भी हमारा किसी स्थिति में जब देखकर हमारे अनुसार वो नहीं चल रही होती तो मन इतना तंग हो जाता है कि फिर हमको अपने बोलों पे भी कंट्रोल नहीं रहता, हमारे दिमाग में इतना गुस्सा भर जाता है कि हम कि अपने बिल्कुल चैन गवा देते हैं और दूसरों को भी कठोर वचन बोल देते हैं। तो इस पारे को कैसे कंट्रोल करना है, वो जो सहज भाव की बात की, चाहे ये बैलेंस्ड अप्रोच हो एकदम कि स्थिति वही बात जैसे पहले भी दासी कह रही थी कि कोई भी घटना हो रही हो हमारे साथ, कैसी भी सिचुएशन हो, तो भी एक रस ये अपने आप को बिठा कर कि मन में कि कोई बात नहीं, हमें दुख में बहुत दुखी नहीं होना और सुख में बहुत खुशी नहीं लेनी, तो किस तरह ये अपने आप को कंट्रोल की बात नहीं है, ये वो अवस्था का जिक्र हो रहा है कि सहजता। जैसे एक नदी है वो अपने आगे अगर पत्थर भी आ रहे हैं तो अपने आप को ऐसे वो पानी टर्न कर लेता है कि ऑब्स्ट्रक्शंस हैं पर पता है कि बहना तो नीचे की तरफ ही है, ये विनम्र होकर बहना है, वो उसका एक पाथ है, तो वो उस कठिनाई देखकर उस पे वो नहीं कहना कि अब आगे एक रुकावट है, इतना बड़ा पत्थर है, तो अपने आप को मोल्ड करना, वो बात की सहज अवस्था का जिक्र कि ये कैसे हमने कुछ भी हो अपने आप को ये इस तरफ इंक्लिनेशन नहीं रहनी कि हमारे को नेगेटिव होना है, बल्कि कोई दूसरा सोल्यूशन देख के अपने रिएक्शंस को चैनलाइज करके एक पॉजिटिविटी की तरफ आना है। हाँ जी
अवतार मिले जे साधु पूरा मन ना ए आवारा रहे,
तो कैसे ये जो मन की अवस्था की बात है कि कैसे हम पल पल में हमारा मन भटकता रहता है, कभी हम अगर कहीं होते हैं काफ़ी लोग, कभी हम अपने घर परिवार में भी किसी से बात करते हैं तो एकदम बात करते करते ख्याल ही कहीं और चला जाता है, और फिर एकदम ऐसे झटका लगता है जब अगर कोई पूछता है कि आप सुन भी रहे हो मेरी बात कि नहीं, तो एकदम पता लगता है कि हम चाहे फिजिकली उस कमरे में हैं उस व्यक्ति से बात कर रहे हैं पर हमारा ध्यान भटक गया, हम कहीं और ही अपने वो चले गए। तो ऐसे ही ये जो मन है ये भी किसी भी डायरेक्शन में कभी कहीं पर जब होता है तो कुछ और सोचने लगता है, कुछ और करने लगता है, ये वो चैन ये सुकून उस समय उस मन से वो गायब होता है। तो कैसे सत्संग के माध्यम से ये साधु का जो संग है, आप सब महात्मा जो इतने उस कोटि के हैं उच्च, तो ये निरंकार सबके अंदर जहाँ बस रहा है, जब हम जितने ज़्यादा इंटरैक्शंस अपने जैसे बोलते हैं संगत का असर, ये संगत से हमने ग्रहण करनी है पॉजिटिविटी और वहीं से हमने अपने मन को भी काबू में रखना है, क्योंकि जब तक हम अपने मन पे काबू रख रहे हैं, अपने सोच विचार को ठीक रख रहे हैं, तभी हमारे आत्मा पे भी उसका वही इम्पैक्ट आना है। तो हमने अपने मन को उस तरह कभी आवारा नहीं होने देना और इस तरह किस अपने आप को वो भाव रखने हैं कि चाहे जो भी हो हमारे साथ, हमें सिर्फ़ और सिर्फ ये रखकर मन में कि हमारे को अपनी असली पहचान मिल गई, हमारे अंदर जो गुण हैं, जो सदैव से संतनकारी मिशन की आज जहाँ 90 वर्ष भी हो गए हैं, तो वो जो एक भाव है सिखाने के कि एकत्व का भाव, ये वननेस का भाव, यूनिवर्सल ब्रदरहुड का भाव, कि कैसे हमने हमारे शरीर चाहे किसी भी रंग के हैं, चाहे कहीं पे भी जन्म लिया है, तो वो एक बायसनेस नहीं आनी चाहिए। ये कोई भी ऊंचा कोई भी नीचा नहीं है, सबके अंदर वही परमात्मा है, एक ही पेडेस्ट्रियल पे हम खड़े हैं, तो कैसे हमने भेदभाव वो नहीं करने हैं, सब अपने ये परमपिता परमात्मा अपना, तो परमात्मा की सारी रचना भी उसी समान एक ही पेडेस्ट्रियल पे, तो कैसे हमने हमेशा यही भावों को कायम रखना है कि हमें हम कोशिश करके जितना भी हो सके ये चेतनता को अपनी रख कर कि हमारे अंदर चाहे कोई भी कैसे भी भाव हो, चाहे मन उथल पुथल हो रहा हो, तो हमेशा एक स्टेबिलिटी की तरफ एक वो अप्रोच रखते हुए, वो नेगेटिविटीज़ में ड्वेल ना होते हुए, सिर्फ़ और सिर्फ यही देखकर कि हम जितने द मोर वी आर लाइक गॉड एज मच एज़ वी कैन बी, जितने गॉडलीनेस अपने अंदर अपनाएं, जो गुण इस प्रभु परमात्मा के हैं, जो वही गुण हम अपने अंदर जितने भर सकें, बिकॉज़ वो बात वही आती है कि हम एक स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं जो एक ह्यूमनली एक्सपीरियंस ले रहे हैं, तो सिर्फ ये शरीर के अंदर आके भ्रमित हो गया ये आत्मा भी कि सिर्फ शरीर तक ही ये कायम है, जबकि उसकी असली पहचान तो बहुत ही एलिवेटेड है। शरीर ने तो एक दिन ख़त्म हो जाना है, पर ये आत्मा का अपने परमात्मा से जो मिलन होता है, ये हमको इस दुनिया में रहते रहते करना है। चाहे अपनी जिम्मेवारियाँ ये आए हैं जब इस मनुष्य तन को लेकर, तो उसमें गृहस्थ भी है, उसमें कामकाज भी है, उसमें और भी जो भी जिम्मेवारियाँ हैं उनको तो करना ही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से पीछे नहीं होना, पर साथ ही साथ ये याद रखना है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, ये हमने जन्म क्यों लिया है, हमने अपनी आत्मा को रिफाइन करना है। ठीक है, शरीर का जहाँ ध्यान रखना है वो तो रखना ही है कि ये परमात्मा ने जो शरीर हमको बख्शा है, तो वो चाहे एक्सरसाइज का फॉर्म करे या जैसे भी, कि हमें अपने उस तन को जितना एक्टिव रखेंगे उतना ही हम वो जस्टिस कर पाएंगे कि ये हमको मिला है बीमारियों से दूर रह के। फिर भी असल बात ये है कि आत्मा का ही ये सारा खेल है, तन ने तो एक दिन ख़त्म हो जाना है, पर जब तक हमारा ये लाइफ स्पैन है हम क्या कर रहे हैं उस तन के साथ, क्या हम अगर कोई कष्ट है हम अपनी सोच विचार कैसे रख रहे हैं। ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शरीर की तरफ कहती है कि डॉक्टर पे चले जाओ, अपनी मेडिकेशन कराओ, पर अगर उसके बाद भी ये तकलीफ़ जारी रहती है, या फिर कभी ऐसे धन की बात भी आती है कि आर्थिक वो इतनी स्टेट ठीक नहीं हो, तो भी हम अपनी मेहनत से वो ग्रेज ना करें, हम मेहनत पूरी करें, डॉक्टरों पे जाएं, पर फिर भी अगर हमारा कष्ट दूर नहीं है, तो उसमें हमें ये शिकवा बिल्कुल नहीं करना अहंकार से परमात्मा से कि हमको क्यों ऐसा कष्ट मिला, हमने ऐसा क्या किया, वो हमें शिकवा नहीं करना, सिर्फ शुक्राना करना है कि दातार हो सकता है हमारी तबीयत और बिगड़ सकती थी, पर शुक्र है सिर्फ इस छोटे में ये तकलीफ़ काट रहे हो, इसी में ही शरीर का गुजारा हो रहा है। तो वही बात, अपने मन को भी उस तरह काबू रखना कि चाहे हम अपनी कोई खामी देखें भी, तो अपने आप को इतना ना कोस लें कि एक वो डिप्रेस स्टेट में ले आएं कि हमारे अंदर तो बहुत कमियां हैं, पर वो अप्रोच रखें कि हाँ, अगर हमें समझ आ गया है कि हमें अपने लाइफ के कितने एस्पेक्ट्स पे कहाँ कहाँ काम करना है, तो धीरे धीरे एक एक गुण पकड़ के उसको अपनी ज़िंदगी में उतारें। तो दासी, आप सबका और ज़्यादा समय नहीं लेना चाहती कि सब दूर दूर से भी यात्रा करके आए हैं और घरों को भी जाना है, और अभी भी कितनी संगत है जो पंक्तियों में भी है, तो सत्संग का भी समय अब हो चुका है। तो दासी, आप सबसे यही एक कामना करते हुए आशीर्वाद अपने लिए भी लेते हुए और सब संगत के लिए कि ये निरंकार प्रभु परमात्मा से हमारा जो एक एहसास की बात है कि ये फीलिंग कि वी आर ऑलवेज सराउंडेड बाय निरंकार दिस गॉड ऑलमाइटी व्हिच एवर नेम वी वांट टू कॉल इट बाय कि हम जिसमें भी आस्था रख रहे हों उस नाम को भी अगर लें कि वो जो शक्ति है वो हमारे साथ अंगसंग है और वो संतों ने तो युगों युगों से चाहे कोई भी युग रहा हो हमसे क्या चाहा है एक इंसान होने के एक ह्यूमन वैल्यूज़ होने के एक इंसानी गुण हमारे अंदर होने हैं तो हमको अपने आप पे एक ये वॉच रखनी है ये इंट्रोस्पेक्शन करते रहना है कि क्या हम उन ह्यूमन वैल्यूज़ पे चल रहे हैं या फिर हमारा दिल और दिमाग हमें कहीं और लेके जा रहा है। तो दासी आप सबका एंड में सिर्फ ये धन्यवाद करते हुए कि इतने इनकन्वीनियंस भी चाहे हुई होगी दूर दूर से आने में तो भी आप सब ये समय निकाल के सत्संग को दे रहे हैं जो उसी के साथ साथ सेवा और सुमिरन भी कर रहे हैं। तो दातार कृपा करे सभी पर कि चाहे ये जो भी तन मन धन सब परमात्मा का ही है और वो उसी काम आए दूसरी नेगेटिव काम किसी ना आए। तो इन्हीं शब्दों से दासी आप सबसे आज्ञा लेगी। सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।